Listeners, welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being a Monday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that listeners may have on economic, business and stock market news. But of course, as we always say, do remember, we do not address company-specific queries. Our listeners may connect and call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke Sombar ke ank mein aapka swagat hai. Hamesha ki tarah hum hazir hain arthniti, karobar ya share bazaar se juda koi bhi taza khabron ko lekar. Saath hi Sombar ke din hamare karyakram mein aap bhi hua karte hain sammelit. तो आपके सवालों की भी प्रतीक्षा हम करेंगे. आप हमसे संपर्क के लिए डायल कर सकते हैं 2331-4444-2342-1050 या फिर 2331-0464. बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं. आप आज हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं सरबजीत.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रिवर्स 8-डे लूजिंग स्ट्रीक टू एंड विद मार्जिनल गेन्स. सेंसेक्स एड्स 58 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस अबव 22,950. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launches Mutual Credit Guarantee Scheme for MSMEs. And crude oil prices fall. Brent crude trades at $74.65 per barrel.
कारोबारी सप्ताह के पहले दिन घरेलू शेयर बाजार में पिछले 8 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थमा. मामूली बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक. सेंसेक्स 58 अंक उछला. निफ्टी 22,950 के अंक से ऊपर आया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटी. ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $74.65 प्रति बैरल के स्तर पर आए. घरेलू शेयर बाजार में पिछले 8 सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थम गया और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. फार्मा, हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की अगुवाई में यह तेजी आज देखी है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 58 अंक यानी 0.08% बढ़कर 75,997 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 30 अंक यानी 0.13% बढ़त के साथ 22,959 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में आज मिला जुला रुख दिखा. एक ओर लिवाली से बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.5% से अधिक की तेजी आई. वहीं बिकवाली के दबाव में स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% से अधिक फिसल गया.
The benchmark domestic equity indices today snapped their 8-day losing streak to end with marginal gains led by pharma, healthcare and consumer durable sectors. The 30-share index at Bombay Stock Exchange Sensex rose 58 points or 0.08% to close at 75,997. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 added 30 points or 0.13% to settle at 22,959. The broader market indices at BSE ended mixed. The mid-cap index gained over 0.5%, while the small-cap index slipped over 0.5%. In the Sensex index, 20 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Bajaj Financial Services surged over 2.8%, IndusInd Bank rose over 2.3%, and Power Grid gained over 2.2%. Conversely, in the top laggards, Mahindra & Mahindra shed more than 3.7%, Bharti Airtel slipped over 2.4% and TCS fell 0.75%. In sectoral indices at the BSE, 11 out of 21 sectors ended up. Among top gainers, healthcare advanced over 1.1%, consumer durables gained 0.9%, and services added over 0.8%. Conversely, in top laggards, telecommunication as well as tech both lost over 1% each. Information technology and industrials both slipped over 0.6% each, and focused IT fell over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,733 companies declined and 1,354 advanced, while 134 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 22 companies hit their 52-week high, while 747 hit their 52-week low.
हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं. आपसे आग्रह, कुछ पल और हमारे साथ बने रहें. पहले हम रुपए की खबर आपको देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत होगी. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज एक डॉलर की तुलना में रुपया 5 पैसे कमजोर हुआ, 86.87 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतरदिवसीय कारोबार में 106.76 पर चल रहा था. और इस बीच हमारे साथ फोनलाइन पर हैं नोएडा से साहिल. साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए.
हेलो सर
जी.
तो मेरा सवाल ये है कि मेरा इंटरेस्ट
आपकी आवाज बीच
में थ्रू म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग.
आप साहिल,
तो जैसा कि हम अभी चेक कर पा रहे हैं कि काफी गिर चुका है ये स्मॉल कैप और हमारा मिड कैप फंड्स, तो क्या ये सही समय है लगाने का, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा फंड्स है जो मैं लगा सकता हूँ, या मेरे को थोड़ा सा और वेट करना चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि कितना टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनको, इन फंड्स को रिबाउंड करने का और उसी लेवल पे आने का जिस पे पहले थे, या से 7-8 महीने पहले? थैंक यू.
साहिल, अगर आपके पास फंड है अभी तो आप थोड़ा सा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में लगाना बेहतर नहीं होगा. आप कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम, चाहे वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वहां पे कर सकते हैं. तो इन दो जगहों पर आप थोड़ा सा पैसा लगा दें, और थोड़ा पैसा यानी कि लगभग 60-40 का रेशियो लेकर के चलिए. 60 आप म्यूचुअल फंड में डालिए और 40 वहां डालिए. दूसरा आपका प्रश्न है कि कब रिबाउंड होगा. ये उम्मीद की जा रही है कि बाजार में जो गिरावट थी वो अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और अब यहां से थोड़ी तेजी आनी चाहिए. समय कितना लगेगा, इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि वो ट्रंप साहब की टैरिफ नीति क्या होती है, और वो जैसे जैसे ऐलान करेंगे बाजार की दशा दिशा उसके ऊपर निर्भर करेगी. तो कोई समय सीमा देना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि भारतीय शेयर बाजार में गिरावट लगभग अपने निचले स्तर पर, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं बॉटम आउट हो चुका है, तो अब यहां से तेजी आनी चाहिए अगले 2-3 महीने में. कितनी जल्दी आपका म्यूचुअल फंड में रिबाउंड होगा, अगर आप एसआईपी में है तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति यह बनेगी कि आपको लोअर प्राइस पे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, ताकि आपके पास यूनिट की संख्या बढ़ेगी और वो आपके लिए भविष्य के लिए एक बेहतर चीज है.
सीम्स टू बी देयर इज होप इन द मार्केट कमिंग अप मिस्टर सिन्हा. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम पुणे, सुरेश. सुरेश जी, अपना सवाल पूछिए.
मैडम नमस्कार.
नमस्कार.
हेलो,
आप जुड़ चुके हैं. सुरेश जी, सवाल पूछे.
सर नमस्कार.
नमस्ते.
मार्केट मंत्रा की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. आप लोग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. 12-15 साल से मार्केट मंत्रा रेगुलरली सुनता आया हूँ.
बहुत बहुत धन्यवाद. सवाल पूछे.
सर मैं टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ जानना चाहता था. एक्चुअली
सुरेश जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही है. आप अपने रेडियो की आवाज बिल्कुल धीमी कर लें, उसके बाद फिर से सवाल पूछें.
मैं मोबाइल से बोल रहा हूँ.
आप जहाँ कहीं हैं, आपकी आवाज हमें बहुत साफ नहीं मिल रही. शोरगुल बहुत है सुरेश जी. बहुत बहुत धन्यवाद. किसी शांत जगह पर फिर से आप पहुंच जाएं पहले, उसके बाद फिर से हमसे संपर्क करने की कोशिश करें. आइए आगे बढ़ते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज मुंबई में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की. वित्त मंत्री ने कहा कि इन उद्यमों पर पिछले 3 बजटों में विशेष ध्यान दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत उपकरणों की खरीद के लिए बिना जमानत के 1 अरब रुपए तक का ऋण दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में निवेश करने वालों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है. एसएम यानी जो छोटे छोटी कंपनियां हैं, लघु मध्यम उद्यमी हैं, उनके लिए यह योजना किस रूप में लाभप्रद साबित होगी?
देखिए, अगर आप याद करें तो कोविड के समय में भी क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई थी और उसका फायदा काफी हद तक इन उद्योगों को मिला, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको हम लोग सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग कहते हैं. और उसके बाद में इस योजना में कुछ बड़ी कंपनियों को भी, कुछ खास क्षेत्रों को भी शामिल किया गया, खासतौर पे जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी, क्योंकि आप याद करिएगा तो कोविड के समय में सबसे ज्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ा था. तो इसका फायदा काफी हुआ है और अब जब इसका विस्तार किया जा रहा है, एक नए स्वरूप में आ रहा है, जहां पर करीब 1 अरब रुपए के ऋण गारंटी की बात की जा रही है. देखिए, सबसे बड़ी जरूरत आज के दिन में क्या है कि संगठित क्षेत्र से कम ब्याज दर पे आपको कैसे पैसा मिले. आपने बजट में एक ऐलान देखा होगा कि जो मझोले, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग है, इनकी परिभाषा बदली गई है और इनके लिए कारोबार और निवेश की सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है. तो उसका फायदा ये होता है कि उनके लिए ज्यादा कर्ज जुटाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में अगर कारोबार बढ़ाना है तो आपको पैसे चाहिए, कारोबार चलाना है तो पैसे चाहिए. दोनों ही परिस्थितियों में ये सुविधा जो है, और एक और बात महत्वपूर्ण है कि इसमें आपको किसी भी तरीके की जमानत नहीं देनी, यानी कि कोई गिरवी नहीं रखना है.
सबसे बड़ी बात यही है कि बिना यानी मशीनरी के लिए आपको अब अधिक आसानी से, सुविधाजनक रूप से ऋण उपलब्ध हो जाएगा. बहरहाल, हमारे साथ महाराष्ट्र से फोनलाइन पर है के शुक्ला. स्वागत है आपका शुक्ला जी, सवाल पूछे.
जी, गुड इवनिंग. अभी एक्सपर्ट के थ्रू जो बता रहे थे ट्रंप कुछ टैरिफ लाने वाले हैं
जी,
तो क्या इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में अमेरिका का वर्चस्व रहता है और टैरिफ का साइड इफेक्ट कंटिन्यू बना रहेगा?
बिल्कुल. देखिए शुक्ला साहब, एक चीज आपको याद रखना है कि अमेरिका और चीन, ये दो देश ऐसे हैं जिनकी ग्लोबल जो आपूर्ति, वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था, उनकी बड़ी हिस्सेदारी है. ऐसा कोई भी कदम उठाएं जिससे कि विश्व व्यापार पर असर पड़े या आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़े, तो जाहिर है कि उससे पूरे दुनिया के शेयर बाजारों में जो है वो स्थिति बदलती हुई दिखाई देती है. तो उनके जैसे जैसे ऐलान आ रहे हैं, आपने महसूस किया होगा कि दुनिया भर के तमाम बाजारों में उठापटक देखने को मिल रही है और भारतीय शेयर बाजार इससे अछूता नहीं है. अब नई नीति वो क्या लाते हैं और किस तरीके से वो नीतियों में बदलाव करते हैं, उसका इंतजार तो रहेगा. लेकिन हाँ, एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि भारतीय शेयर बाजार में जिसको कहते हैं कि गिरावट, अब इससे ज्यादा होने का अनुमान नहीं है. देखिए, अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग कोई ज्योतिषी नहीं है जो हम आपसे ग्रह नक्षत्रों की दशा देख करके हम बताएं कि शेयर बाजार यहां पहुंचेगा या वहां पहुंचेगा. लेकिन हाँ, जो तकनीकी आधार पर जो संभावनाएं हम दे सकते हैं कि वो निचले स्तर पर पहुंच चुका और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 2 से 3 महीने में चीजें बेहतर होंगी.
आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम कोलकाता, अतानु साहा. अतानु जी, अपना सवाल पूछिए.
गुड इवनिंग. व्हाट अबाउट सर आवर एमएसएमई सेक्टर? सर, द मैटर ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट, हाउ डू इट एंड इज इट रिफ्लेक्ट इनसाइड आवर करंट बजट? थैंक यू सर.
The first question you talked about the MSME and as we were discussing about the new guarantee scheme, the most important thing we have seen in this budget, that definition has been changed. Now the micro unit or the medium or the small, in terms of investment, the matrix of 2.5 will be applied. That means if the limit earlier was 1 crore, then it will be 2.5 crore. And in terms of turnover, it will be 2 matrix. That means if earlier it was 5 crore, then it will be the 10 crore. What are the benefits of this change in this definition? That means you are able to get more and more capital from the organized sector. That means that financially you will be in a better position. So this is how we are seeing MSME. And today when the new scheme has been launched, which is going to provide credit for buying machinery and various other capital goods, that without any collateral. So this is about MSME. And you talk about minimum governance and thing. Of course, we are seeing a lot of changes in the policy regulation, and if you can remember, Prime Minister Narendra Modi has just announced setting up a deregulation committee, so that is also going to work in this direction.
आइए लौटे हैं गुरुग्राम. हमारे साथ हैं भरत नरूला. नरूला साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए.
Recently there has been a drop in the repo rate by the MPC RBI. And I wanted to know what are the chances that they will also reduce the deposit rates of small savings scheme like post office senior citizen savings scheme, which presently gives an interest of 8.2%. So are there any chances that they'll reduce the deposit rates for this? Because I want to shift some funds from mutual funds to post office scheme, because this is the highest rate which is being obtained right now.
Okay. Mr. Narula, you have at least 30 plus 12, that means 42 days more to put money in the post office savings schemes at the current rate. The next rate recycle will take place from April 1, and we are expecting that because of the cut in the repo rate, and when the banks are expecting more and more deposit mobilization, there could be some cut in the small saving interest rate. And please remember that cut will be first in 5 years, so that is going to be a very important thing. So my advice would be that if you want to put money, please do that before 31st March 2025.
Moving on to the next big story of the day, India's smartphone exports surged by 140% in January compared to the same month last year, reaching a record 25,000 crore rupees. This remarkable growth was driven by tech giants Apple and Samsung, who ramped up overseas shipments from their Indian supply chains. From April to January of the current financial year, total smartphone exports have touched 1.55 lakh crore rupees, representing a 56% increase over the corresponding figure of 99,120 crore rupees in the same period last year. India's growing electronics exports, especially in smartphones, have been boosted by the government's production-linked incentive scheme, which has attracted global tech giants. Mr. Sinha, your take on this PLI and its boost to the smartphone industry.
See, I mean, if you see the market, domestic market, we have 140 crore population. And India, now we have a mobile penetration of almost 100 crore plus. So the big market is available. The second thing is that the Generation Z or other generation, which are the younger generation,
that's right,
they have a tendency to change their mobile handset in a very shorter period, say 1 year or maximum 2 years. So that is also helping these companies to sell their product in the market. At the same time, globally, the demand is there. And considering the lower cost of production in India, the companies are producing more, and almost all the global majors are having manufacturing or assembling plant in India. And the PLI has further boosted the overall manufacturing facility here. We are seeing how the Apple is doing, what kind of production line they have, what kind of assembly line they have, and what kind of supply they have. And we expect that this export as well as the domestic market will have more increase in the coming year because of the change in the domestic market, I mean consumption pattern in the domestic market, as well as demand in the global market.
एक बार चर्चा को लौटाना चाहेंगे शेयर बाजार की ओर, यानी बाजार में कह लें कि हम अब जो तेजी का सिलसिला हमने आज से देखा है, आपने कई बार यानी श्रोताओं को कहा कि बॉटम आउट कर चुका है बाजार, तो इसके क्या पैमाने हम लेके चल सकते हैं, क्या क्या यानी संकेत ऐसे दिख रहे हैं कि बाजार अब अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है, यहां से ऊपर ही उठना चाहिए यदि वर्तमान स्थितियां बनी रही तो?
तीन चीजें हैं अगर मैं कहूँ. सबसे पहली चीज है कि जो घरेलू वित्तीय संस्थाएं हैं, जिसको हम लोग DFIs कहते हैं, वो काफी एग्रेसिवली अब पैसा लगा रहे हैं. और जैसे पहले क्या होता था कि हमारा पूरा बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों पर निर्भर करता था, जिसे हम बाद में फंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के नाम से जाने लगे, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल भी इंक्लूड हो गए. तो FPI अगर भले ही पैसा निकालना शुरू कर दे, लेकिन अगर घरेलू वित्तीय संस्थाएं पैसा डालेंगे तो आपके बाजार को एक सहारा मिलेगा, और उनके पास फंड है और वो पैसा अब लगाना शुरू कर रहे हैं, जो एक अच्छे संकेत है. पहले भी लगा रहे थे, अब वो और आक्रामक होंगे क्योंकि कीमतें नीचे आ गई हैं. दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ब्याज दर में एक गिरावट हो चुकी है, जो नीतिगत ब्याज दर है, और अगला जो पॉलिसी रिव्यू जो कि अप्रैल में होने वाला है, उम्मीद यह है कि एक और गिरावट होगी. तो अगर जब बाजार में सबसे अच्छी खबर क्या होती है, ब्याज दर का गिरना, बाजार और ब्याज दर दोनों एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं, तो ब्याज दर में जैसे जैसे घटत होगी वैसे वैसे बाजार आगे बढ़ेगा. तो पहला कारण तो आपका डीएफआई है और डीएफआई के फैसला लेने के पीछे ब्याज दर का है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि कंपनियों के जो तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं मिले जुले हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी बड़े अच्छे से बढ़े हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में अच्छी बढ़ोतरी हम लोग देख रहे हैं, खासतौर पर जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल में। दूसरी तिमाही में हमने देखा था जो कि जुलाई सितंबर की तिमाही थी, उसमें उनमें काफी नुकसान उठाना पड़ा था और उसमें विकास दर में भी हमने गिरावट देखी। तीसरी तिमाही में हम स्थिति बेहतर होते हुए देख रहे हैं और जिसको कहते हैं ना ग्रीन शूट्स, तकनीकी भाषा में कहें तो वो नजर आने लगे, तो ये दूसरा कारण है। तीसरा ये है कि जब महंगाई दर आपकी घट रही हो वो भी एक बाजार में लोगों को प्रोत्साहित करती है। और दूसरा, अगर आप इसको बजट की घोषणाओं से मिला करके देखें, जहां पर इनकम टैक्स की जो व्यवस्था, आयकर की जो नई व्यवस्था लाई गई, उससे लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसे आने की उम्मीद है और इसके आने से बाजार में अगर उसका एक हिस्सा भी आता है तो आपके बाजार में खरीद बढ़ेगी। तो ऐसे में ये आप बाजार की जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमें ऐसा लगता है कि बाजार अब बॉटम आउट हो चुका है, इसके पीछे में ये तीन कारण आपको दे रहा हूं।
श्रोताओं, बहुत महत्वपूर्ण कह लें कि ये जानकारी आपके लिए है कि बाजार अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो वर्तमान संकेत
पहुंचने का अनुमान है। अनुमान मैं ये नहीं कहूंगा कि पहुंच गया, अनुमान उचित नहीं होगा।
यहां से शिशिर एक और सवाल बनता है कि ऐसे कौन से क्षेत्र आपको आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, यदि हम अगला यानी कह लें कि 9 महीना ले लें, यानी 2025 के दिसंबर तक यदि कोई क्षेत्र हो तो वो कौन आपको तेज गति से बढ़ता नजर आ
रहा है? सबसे ज्यादा हमारी नजर एफएमसीजी पे है, क्योंकि अगर लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो खरीदारी होगी और जैसे इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें हम काफी अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा एरिया जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज का। फाइनेंशियल सर्विसेज के बढ़ने की एक वजह यह भी है कि ब्याज दरें घटेंगी, कर्ज देने की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है और कर्ज देने की रफ्तार बढ़ेगी तो उससे उनके लिए वॉल्यूम गेम में उनको फायदा हो सकता है। भले आप उसको कह सकते हैं कि एनआईएम जो है यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन जब जमा आप कम पे लोगे तो आपके लिए उस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो पहला मेरा जो टेक होगा वो एफएमसीजी है, जिसमें खासतौर पे ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर है, और दूसरा जो मेरा टेक होगा फाइनेंशियल सर्विसेज पे।
Yes, listeners, you are with us in our program Market Mantra, and today being a Monday, we invite callers to connect with us. We invite our listeners to connect with us on their queries on economic, business and stock market news. And you can connect with us on 2331-444-2342-1050 and 2331-0464. Meanwhile, moving ahead in the program, India's trade deficit widened to over $22.9 billion in January 2025, up from $21.94 billion in December 2024. Ministry of Commerce and Industry data showed that merchandise exports in January stood at $36.43 billion as compared with $38.01 billion in December, while imports stood at $59.42 billion, down from $59.95 billion in December. Services exports in January were estimated at $38.55 billion and imports at $18.22 billion during last month. During April-January period this fiscal year, exports increased by 1.39% to $358.91 billion and imports grew by 7.43% to $601.9 billion as compared to April to January 2023-24. Meanwhile, Munish from Mumbai has joined in. Munish, welcome to the show. Please ask your question.
Good evening to everyone.
Good evening.
मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो gold ETFs होते हैं, are they directly linked to the commodity gold or is it something that is a derived index of the gold available in the market? Thank you.
मुनीश जी, आपने जो दूसरी बात कही ना कि एक डिराइव्ड वैल्यू जो होती है उससे वो मेजर किया जाता है, इसका नाम ही है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो वो एक्सचेंज के ऊपर है। लेकिन हाँ, इसके पीछे गोल्ड रखना होता है, जो कोई भी कंपनी, जो कुछ भी फर्म या जो भी म्यूचुअल फंड इसको लॉन्च करते हैं उतना गोल्ड उनको रखना पड़ता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो डिराइव्ड होती है वो एक इंडेक्स से ही होती है और वो इंडेक्स मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज पे ट्रेडेड होता है, खास तरह का फंड के तौर पर आप भी ले सकते हैं इसको। दोनों चीजें हैं, इंडेक्स भी है और फंड भी है।
आइए मुंबई से लौटने दिल्ली, हमारे साथ फोन लाइन पर है विजय। स्वागत है विजय जी आपका, सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम. सर मेरा क्वेश्चन है डिफेंस और शिप बिल्डिंग का भी शॉर्ट टर्म में क्या व्यू रहेगा सर?
शिप बिल्डिंग में काफी अच्छा चांस है क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं और इनकम टैक्स को लेकर के काफी कुछ बदलाव जो जुलाई के में किया गया था उसकी भी विधिवत घोषणा कर दी गई है. क्रूज पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, डोमेस्टिक क्रूज के ऊपर काफी उम्मीद की जा रही है कि वो बाजार काफी तेजी से फैलेगा. तो मेरे हिसाब से शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा भविष्य है. डिफेंस की जहां तक बात है, डिफेंस में भी उम्मीद काफी अच्छी है क्योंकि डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने की उम्मीद है. और दूसरी बात, अगर आपने अभी देखा होगा कई जो आंकड़े आए हैं डिफेंस को लेकर के, रक्षा क्षेत्र को लेकर के, वो भी उत्साहजनक है निर्माण को लेकर के. तो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर, तो डिफेंस और शिप जो दोनों है, शिपिंग इंडस्ट्री जो है, दोनों के लिए एक अच्छा समय है.
दिल्ली से ही हमारे साथ फोनलाइन पर है प्रीतम. प्रीतम जी स्वागत, सवाल पूछें.
जी नमस्कार सर.
नमस्ते
सर, मुझे ये पता करना था, जैसे कि आप लोग कहते हो कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है. जी सर.
जी जी जी.
तो उसकी वजह से बाहर जो यहाँ पर लोग बाहर से इन्वेस्ट करते थे वो लोग दोबारा बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की तो वैल्यू कम हो रही है रुपए की. ठीक है. तो उसकी और उसके अलावा एक वजह और भी है कि यहाँ पर सोना भी महंगा हो रहा लगातार उसकी वजह से.
तो सवाल आपका क्या निकल के आया प्रीतम जी, यानी कुल मिला के हम सार क्या निकालें कि इनके क्या रहे कि?
देखिए, ये एक तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप देखते हैं डॉलर इंडेक्स, आपने अभी रिपोर्ट पढ़ी थी, आपने कहा था डॉलर इंडेक्स बढ़ा है और उसमें 6 करेंसीज होती हैं जिसके आधार पर देखा जाता है. तो जब डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका डॉलर मजबूत हो रहा है, और एक करेंसी जब मजबूत होती है तो दूसरी करेंसीज में गिरावट आती है. हम लोग जब ये कहते हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है, तो वो इसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है, दुनिया के और दूसरी मुद्राओं के तुलना में भी देखना पड़ता है. और वो स्थिति ऐसी है कि दुनिया के दूसरे देशों की मुद्रा भारतीय रुपए के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हुए हैं. तो इसीलिए इस तथ्य को समझना जरूरी है. दूसरा, सोना. देखिए, सोने की हकीकत यह है कि जब कभी भी दुनिया में अनिश्चितता, वैश्विक परिस्थितियां विपरीत दिशा में जाएंगी तो सबसे ज्यादा निवेश सोने में होता है. तो आज जो सोने का भाव बढ़ रहा है उसका रुपये से कोई लेना देना नहीं है, वो वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से है. तो उसको उस नजरिए से देखना जरूरी हो.
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा निवेशकों की लिवाली से. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% लाभ में रहा. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में भी 0.7% की ही वृद्धि हुई. चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.27% ऊपर आ गया. उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हैंगसिंग मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ है. जापान के निक्केई 225 सूचकांक में बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास सूचकांक बना रहा. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां तेजी का रुख था. अंतरदिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.8% से अधिक ऊपर. फ्रांस का कैक 40 और लंदन का फुटसी 100 दोनों 0.1% से ऊपर कारोबार कर रहे थे.
Oil prices fell marginally today as traders assessed developments on a potential Russia-Ukraine peace deal that could ease sanctions disrupting global supply flows. Brent crude was trading over 0.1% down at $74.67 per barrel, and WTI crude slipped 0.1% to trade at around $70.67 per barrel when reports last came in.
सर्राफा बाजार में ध्यान दें तो सोना चांदी आज चमक अपनी बिखेर रहे थे. भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.37% बढ़त के साथ 85,190 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी भी थोड़ी सी बढ़कर 96,040 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. और एमसीएक्स में भी वायदा आपूर्ति वाले सोने के भाव अप्रैल और चांदी दोनों के बढ़त के साथ चल रहे थे. यहीं पर श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी धन्यवाद, नमस्कार.
And listeners, before we wrap up today's edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices reverse 8-day losing streak to end with marginal gains. Sensex adds 58 points. Nifty closes above 22,950. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launches Mutual Credit Guarantee Scheme for MSMEs, and crude oil prices fall. Brent crude trades at $74.65 per barrel. And that's it in today's edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.